हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नंद यशोदा दुला गिरिवर धारी गोपाल पारो पुकारो नंद यशोदा दुला गिरिवर धारी गोपाल
हो सकता है ये आपकी आखिरी पुकार होगी ऐसे पुकारो
गोपाल 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 गोपाल
पुकारो
नंद यशोदा दुलार गिरिवर धारी गोपाल नंद यशोदा दुलार गिरिवर धारी गोपाल गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोपाल 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 हे गोपाल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम गुरुदेव कृपा बिंदु दिया
बोलो बोलो
कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद
श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की श्री राधा अंजन बिहारी जी महाराज की श्री अंजनोख वन की श्री अंजन वन की श्री किशोरी कुंड की निताई गौर प्रेमानंदे जय जय श्री राधे श्याम हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका अंजन वन में स्वागत है। इसको आंजनोख भी कहते हैं। बहुत सुंदर सुंदर लीला भगवान करते हैं। हमने अभी तक तो 5% को भी छुआ नहीं है, क्योंकि 7 दिन में क्या ब्रज यात्रा कर सकते हैं। जितना आए उतना कमी है यहाँ पर, तो इसलिए एक पूरा जीवन भी लगा देंगे ना तो भी ये सारे स्थानों का दर्शन नहीं कर सकते। फिर भी हमको प्रयास करना चाहिए। ये सोचना नहीं चाहिए कि अरे हमारा वृंदावन हो गया। हम गए थे वृंदावन, लेकिन हम लोग ऐसा एक बिंदु को स्पर्श करके घर लौट गए और हमारा वृंदावन हो गया। थोड़ा सा देखो जरा, तो कि हमारे महाराष्ट्र में बहुत जो है संकल्पना ये कि आमचं वृंदावन झालं, आमचं पुरी पण झालं, आमचं द्वारका पण झालं, सगळं झालं, वापस जाना नहीं उधर, बस हो गया, भोजा किया, हजेरी लगाया, आ गया। तो ये संकल्पना जो है ना वैष्णव धर्म के बिल्कुल उल्टी है। वैष्णव धर्म में संकल्पना ये है कि उन्हीं स्थानों को बार बार जाकर देखना है, वही कथा को बार बार सुनना है, उसी में और रुचि और गहराई में जाना है, उसके सार तत्वों को ढूंढ के निकालना है। मुझे याद है जब हम काय कैंप में यहाँ पर आए थे ना, 6 बजे सुबह आए थे, इतनी कर्री धुंध थी उसमें, डीप कोहरा, डीप फॉग, उसमें ऐसे आदमी दिखाई नहीं पड़ रहे थे कथा में। वैसे 4-4 मफलर पहन के, जैकेट पहन के ऐसे हमने कथा किया था, तो उसमें भी यहाँ के गांव के लोग ऐसे मटका भर के ठंडा ठंडा पानी भर के ले जा रहे थे, बीच में धुंध में पूरे ऐसे एकदम, रास्ता भी धुंध में, सब धुंध में, क्योंकि भगवान का धाम जो है ना वो दिव्य है और उसकी दिव्यता में भी विविधता है। ऐसा नहीं कि वो दिव्यता सेम है। जितनी भी बार मैं यहाँ पर आया हूँ, हर बार मुझे यहाँ पर अलग नज़ारा, अलग दृश्य, अलग अनुभूति आई है, क्योंकि वही नव नवायवान भगवान है ना, नवल नवल किशोर, यानी हमेशा नए रहते वो, कोई पुराने नहीं होते। एक उनका नाम है अदृष्टा, ऐसा कुछ नाम है, मतलब उसका अर्थ है कि जिसको जिसको किसी ने आज तक देखा नहीं है। कृष्ण भगवान को एक नाम ऐसा है जिसका अर्थ है कि ये दर्शन किसी ने नहीं किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि आज जो दर्शन दे रहे हैं वो भगवान ने पहले कभी नहीं दिखाया था। इस तरह से इस व्यक्ति को आप पहली बार देख रहे हैं आज, जिसको आप जानते हो लेकिन उसको पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि आज जो आपके लिए उनकी तरफ से सौंदर्य प्रस्तुत है वो पहले कभी भी इतिहास में प्रस्तुत नहीं था, और जो कल होगा वो कभी प्रस्तुत नहीं होगा। ये भगवान का एक विशेष स्वभाव है। और कवि कर्णापुर अपने कृष्ण कर्णामृत में इसका वर्णन करते हैं, इसका नाम अर्थ बताते हैं। इसलिए आप कभी कभी सोचते हैं लोग कि अरे गौलोक में जाएंगे तो वहाँ न्यूज़पेपर नहीं होगा, टेलीविजन नहीं होगा उधर, तो कैसे हम लोग वहाँ पर रहेंगे? वो कृष्ण 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 करते उसके पीछे पीछे भागेंगे, कैसा जीवन बोरिंग होगा वहाँ पर। वो इंद्र एक बार कुछ पाप किए तो वो सुअर बन गए, तो वो सुअर बन गए तो पृथ्वी पर आए और अपना एक अच्छा गटर ढूंढा फ्रेश, फिर उनका परिवार वहाँ, पत्नी सुअर की पत्नी, सुअर की छोटे छोटे बच्चे, फ्रेश माल वहाँ पे बह रहा है, वहाँ पर घर बसाया। तो इंद्रासन जो है वो खाली हो गया, अभी देवताओं का कारोबार कौन देखेगा? सब देवता परेशान हो गए, राजा गायब, पाप के फल को भोगने के लिए नीचे गया हुआ है। तो नारद मुनि को नियुक्त किया, जाओ भाई उसको ले आओ कि कैसे चलेगा। तो नारद मुनि नीचे आए, वो देखा हमारे इंद्र महाराज जो है सुअर बनकर पूरा सब परिवार आनंद लूट रहे, तो उन्होंने उनको काफ़ी समझाया कि चलो तुम इंद्र थे और तुम्हारा इंद्रपद में ऐसा उर्वशी, मेनका, रंभा, ऐसे सबका वर्णन किया, नंदनवन का वर्णन किया, पुष्पों का वर्णन किया कि कभी आपके यहाँ पर फूल जो आते हैं कोई मुरझाते नहीं हैं, ऐसा बहुत सारा वर्णन किया। तो ये सब सुना उसने, अच्छा श्रवण किया बहुत प्रेम से। फिर इनमें एक प्रश्न पूछा कि वहाँ पर फ्रेश टूल है क्या, मतलब ताज़ा मल है क्या वहाँ पर? देखो यहाँ पर ताज़ा मल हमारा आता है इधर, फर्स्ट क्लास हमारा परिवार पल जाता है। तो उन्होंने कहा वहाँ पर वो मल नहीं मिलेगा आपको, ताज़ा मल। क्यों पूछ रहा है प्रश्न ये? क्योंकि अभी भी उसकी चेतना सुअर की थी, इसलिए सुअर की चेतना में स्वर्ग का वर्णन करेंगे जो क्या समझेगा उसको। तो नारद मुनि ने अपने दिव्य बल से उसको इंद्र की चेतना दी, मतलब सुअर के शरीर में इंद्र की चेतना दी। जैसे ही इंद्र की चेतना दी, तुरंत कहा है मैं कहाँ हूँ ये गटर में, इतने गंदगी में कैसे आ गया, मैं तुरंत बाहर निकल गया उधर से। तो गौलोक में मल है क्या, मतलब इंद्रलोक में? तो उसका उत्तर नहीं है। किसी ने एक बार पूछा था, बहुत वेस्टर्न व्यक्ति ने, उसको प्रभुपाद समझा रहे थे कि गोलोक वृंदावन में क्या है, कल्प वृक्ष है, हर एक जीव जीवन मुक्त है, सब भगवान के चिरंतन आत्मा है, प्रेम की लीला चलती रहती है। तो उन्होंने एक ही प्रश्न पूछा, वहाँ पर न्यूज़पेपर है क्या? तो न्यूज़पेपर नहीं है वहाँ पर। ऐसा क्यों सवाल पूछते हैं? क्योंकि हम लोग इतने आदी हो गए हैं मोबाइल में वो यूट्यूब देखने का, उसका न्यूज़ देखने का, क्या चल रहा है अभी, कौन सी खबर चल रही है, इतनी आदत पहले अखबार की थी, अभी वो इंटरनेट की हो गई है, अभी सब लोग उसमें देखते हैं, यूट्यूब सब आज तक सब उसमें देखते रहते हैं। दिन भर हमारा मन जो है ना वो 50 चीज़ों में ऐसे बंदर कैसे, इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, कभी बैठता नहीं एक जगह पर, ऐसे हमारा मन जो है यहाँ भटकते रहता है। पर एक बार वो आप देख लो, मैंने कहा था सब लोगों को, आपको अभी मैं कार्तिक के एंड के बाद में बता रहा हूँ, लेकिन कार्तिक के फर्स्ट डे और कार्तिक के एक हफ्ते पहले सबको बताते आ रहा हूँ मैं कि अगर कोई व्रत लेना ही आपको और रियली कार्तिक महीने में आपको प्रगति करनी है, और जहां तक हुआ मन को मारा करेंगे, अगर रियली आपको मन को मारना है और कार्तिक में प्रगति करना है, तो जब के समय पर मोबाइल स्विच ऑफ करके दूर रखो। यह आज के तारीख की सबसे बड़ी तपस्या है, क्योंकि एक दो मंत्र हो गए फिर देखना है। वो कैसा है ना, बच्चों के नैपी में गीला हुआ कि नहीं हुआ बार बार हाथ लगा के देखते हैं, वैसे ही उसको बार बार देखते हैं, दो मंत्र हुआ फिर उसमें फिर टिंग 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 कुछ कुछ बिल बचते, कुछ व्हाट्सएप में आ गया, इसमें आ गया, उसमें आ गया। तो इसने हम लोग इतने आदि हो गए इसके कि भगवान के जप के बीच में भी वो टांग अड़ा रहे हैं अपने को। अभी भी मैं बता रहा था आते समय कि हम लोग नियंत्रित लोग हैं और लोग देश विदेश में बैठ कर हमको नियंत्रित कर रहे हैं कि आपको क्या करना है, आपको क्या सोचना है, आपको क्या पहनना है, आपको क्या खाना है, आपको कैसे चलना है, ये सब लोग वो बताते हैं। और हम लोग पूरा गधे की तरह, वो मेंढी होती है ना, मेंढी काउ हर्ड, हर्ड मेंटेलिटी, पीछे पीछे जा रहे हैं हम लोग। तो कहने का तात्पर्य था ये था कि गौलोक में कैसा रहेगा। तो गौलोक में आपको एक पहले बता देता हूँ, गौलोक में हर चीज़ हर दिन नई होती है, हर क्षण एवरीथिंग इज फ्रेश एंड न्यू, नथिंग इज बोरिंग। वहाँ पर ना आपने बच्चों को देखा है, बच्चों अभी आप चल रहे हो, बच्चे चलते हैं क्या, बच्चे डांस करते हैं, वो दे आर ऑलवेज रनिंग, उनके पैर चलते क्या आराम से, ऐसे दे ऑलवेज डांसिंग ऐसे ऐसे। गौलोक में सब लोग डांसिंग होते हैं, कोई वहाँ पर चलता नहीं है, हर एक व्यक्ति पद लालित्य के साथ नृत्य करते हुए आगे बढ़ता है। कोई हमारे ऐसे गद्य में बात नहीं करते हैं, हर वाक्य संवाद है वो कविता है, वहाँ पर पद्य है, पद्य, एवरी वर्ड इज अ सॉन्ग, एवरी स्टेप इज अ डांस, हर एक कण जो आप ग्रहण करते वो रस है, रस का सार है। तो कभी भी प्रश्न आता है कि दिन भर ये कृष्ण कृष्ण करके कैसे जिएंगे हम लोग, ऐसा लगता है ना यहाँ पर अभी। हाँ 2 घंटा ठीक है भैया, 2 घंटा सुबह कर लिया बस, बाद में दुकान में जाओ अपना बिजनेस करो, कितना रस है उसके अंदर, है ना, माल बेचने में कोई ज़्यादा लिया तो कितना आनंद आता है, अच्छा बड़ा गिराएगा आ गया, कार्तिक महीना आ रहा है। क्योंकि हमको उसमें रस है, तो वो रस वाले चीज़ में जिंदगी भर कपड़ा बेचेगा तो भी आपको बोर नहीं होगा, क्योंकि जिंदगी भर पैसा देते रहेगा कपड़ा। वो रस जो है हमको भगवान में निर्माण करना है, जब वो रस निर्माण हो जाएगा ना तो हम यहाँ नहीं रहेंगे, तुरंत उधर जाएंगे हम लोग। जिस चीज़ का आपने रस पैदा किया है वहीं आप रहेंगे, जो रस आपको चाहिए और वो जहाँ उपलब्ध है वहीं पर आप दिखेंगे, वहीं भगवान आपको रखेंगे, जहाँ पर आपकी रुचि है वहाँ रखेंगे। और क्या, सुअर का घर कहाँ होता है, गटर में, जहाँ पर उसका माल है वहाँ जाएगा वो, कुत्ता कहाँ जाएगा, जहाँ उसका ब्रेड मिल रहा है उसको वहाँ जाएगा। हम लोग कैसे हैं, बाकी कहीं नहीं मिलेंगे, प्रसादम टाइम पे सब मिलेंगे। अगर मंदिर में आपको सब भक्तों को मिलना है ना, सब प्रकार के भक्त, 5-6 लोगों का मीटिंग करना है आपको, तो आपको सबको एक साथ मिलना है, आपको 1 घंटा है, कहाँ मिलेंगे, बेस्ट प्रसादम हॉल, आपको सब मिलेंगे वहाँ पर। जप में फिर कुछ यहाँ रहते हैं, कुछ वहाँ रहते हैं, कथा में कोई बाथरूम में रहता है, कपड़ा धोते रहते हैं, प्रसादम टाइम पे सब लोग मिलेंगे आपको। तो जहाँ जहाँ हमारी रुचि है वहाँ आप मिलेंगे, जिसको नाम के मंदिर रूपी रुचि है वो जप के समय मंदिर में मिलेगा आपको। ये सब हमारा जो कार्य है ना, वो हमारे अंदर क्या रुचि है उसका प्रकट्य है, इट इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ आवर इनर डिजायर, दैट इज वेयर वी आर फाउंड ऑलवेज। तो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है ना, कृष्ण भावनामृत हरि भक्ति जो है, ये हृदय परिवर्तन का मार्ग है, ये ऐसा कोई टाइम पास नहीं है, ये अंदर से हृदय को पूरा परिवर्तित करके भगवान के चरणों में रखने योग्य बनाने का मार्ग है, चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस। बाकी बाहर हम लोग धोती कुर्ता पहनेंगे अच्छा है, वो भी एक बाहरी कल्चर है, दंडवत करते हैं, तिलक लगाते हैं, सब कुछ शेंडी रखते हैं, सब कुछ वो जरूरी है, लेकिन ये सबका परिणाम अंदर बदलाव होने में होना चाहिए, नहीं तो क्या, मुख में नाम बगल में छुरी, ऐसा हो जाएगा। तो ये शुरुआत चर्चा यहाँ से हुई थी कि भगवान इस धाम में अलग अलग जगह पर अलग अलग लीला करते हैं, और अगर सेम लीला भी करते हैं तो विविधता पूर्ण करते हैं, कभी बोरिंग नहीं होता है। अभी मैं यहाँ पर आकर शायद 50 बार कथा तो कर चुका हुआ इस जगह पर बैठकर, कभी यहाँ बैठा हूँ, कभी वहाँ बैठा हूँ, कभी अंदर बैठा हूँ, कभी बाहर बैठा हूँ, उस तरफ बैठा हूँ, इस तरफ बैठा हूँ, तो वही कथा मैं आज अगर 10 जगह मुझे बोलने के बोलेंगे तो 10 जगह मैं बोलूँगा, मुझे नहीं ऐसा लगेगा कि यही कथा क्यों बोल रहा हूँ, दूसरा कथा बोलना चाहिए। अरे वो उसी कथा में भगवान के इतना दिव्यत्व है, इतना आनंद है उसके अंदर, दिव्य आनंद भरा हुआ है कि आपको कभी बोर ही नहीं होगा। फिल्म वालों की कहानी एक बार बोलेंगे तो बोर हो जाएगा आपको, एक बार पिक्चर देख के आए कहानी बोला खत्म, दोबारा बोलने को बहुत बोर हो जाएगा, मतलब जा खुद देखिए बोर हो गया मेरे को। लेकिन भगवान की वही कहानी आप अनंत बार भी कहेंगे तो आपको अलग अलग रस आएगा उसके अंदर, क्योंकि भगवान स्वयं नवायमान है और उनका लीला भी नव यौवन है। तो वैसे यहाँ की जो लीला है बहुत सुंदर लीला है, और हमको भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान अपने हमको उनके अंतरंग लीलाओं के स्थली पर ला रहे हैं। हाँ, आज का दिन जैसे फ्री था हमारा, मतलब कुछ करने का नहीं था, लेकिन भी मेरे शाम को विचार आया कि ऐसे क्यों, जाते समय भी दीपक है ना हमारा, ऐसा बुझते बुझते ऐसा लंबा होना चाहिए, वो बुझने का समय आया तो पहले ही बुझना नहीं चाहिए, वो एंड में ऐसा पूरा बड़ा होकर फिर बुझना चाहिए। तो आखिरी मोमेंट तक ये लाभ लेते रहना चाहिए, जाते जाते भी लेते लेते जाना चाहिए। वो कैसे होता है ट्रेन में, कैसे ना ट्रेन निकलती फिर भी वोड़ा पाव वाला ऐसे देते रहते ना, वो सर ऐसे ऐसे भागते ना, पता है ना आपको ट्रेन में के व्हेन ट्रेन स्टॉप्स ना यू ऑर्डर समथिंग एंड ट्रेन स्टार्ट, वो पीछे पीछे भाग के अरे ले 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 पैसा, कितनी उत्सुकता रहती है उसमें, पैसा दिया ना उसको वड़ा ले लो उसका, जितना चार वड़ा पाव का ले लो उसको। वैसी उत्सुकता हमारी होनी चाहिए भगवान के लिए कि हमने इतना समय निकाला है, छुट्टी निकाल के उधर इतना लॉस करके बिजनेस का आ गए हैं, अरे ले लो जितना भगवान के विषय में जितना ले लो, पता नहीं कल जिंदा रहे नहीं रहे, दोबारा आए नहीं आए। ऐसा क्या कहते हैं ना लौल्यम होना चाहिए, लौल्य यानी कि लालायित, ईगर। रूप गोस्वामी बताते हैं कि भक्ति अगर प्राप्त करनी है तो लौल्यम बहुत जरूरी है। बिना ईगरनेस, बिना उत्सुकता से एक कुछ चीज प्राप्त होती है क्या? अरे शादी भी करनी है तो उसके लिए उत्सुकता होनी चाहिए ना, आई वॉन्ट टू गेट मैरिड, हु इज दैट फॉर्चुनेट गर्ल हु विल गेट मैरिड विथ मी, ऐसा उत्सुकता होना चाहिए तभी लड़की मिलती है, फिर शादी होती है। घर में बैठेंगे ऐसे बोलो शादी करनी है शादी करनी है, तो लड़की दौड़ के आएगी आपके पास। तो हर चीज को दुनिया में करना है तो हमको उत्सुकता होनी चाहिए। मेडिकल में एडमिशन लेना था तभी कितना उत्सुक थे, कितना भागदौड़ी किया पता नहीं। आज तो हम लोग ने तो बहुत आनंद लिया उस समय, एकदम प्रेम से MBBS किया। अभी तो किसी को MBBS करना बच्चे को तो भाई माता पिता के बाल झड़ जाते हैं बच्चों के पहले ही, क्या कहें आपको। लेकिन वो भी कितना उत्साह से करते हैं, सब बंद उस समय, यात्रा बंद, मंदिर जाना बंद, सब बंद। अभी क्या है 12th का अभी एग्जाम हो गया उसका, अभी उसका एडमिशन लेना है, सारे एकदम फोकस्ड रहते हैं उसके ऊपर। वैसे हमको होना चाहिए फोकस्ड। हमारे भक्ति रसामृत स्वामी हैं, गुरु भाई हमारे, बड़े संत हैं महान, वो कहते हैं कि जितना दुनियादारी में हमको गहराई तक रुचि है, हम सबको पता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं हमको कितना इंटरेस्ट है उसके अंदर, उतना ही इंटरेस्ट अगर कृष्ण में आ जाए तो हम गोलोक धाम में होंगे। ज़्यादा कुछ व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। आज हमारा दुनियादारी में कितना दिल फंसा हुआ है, उतना ही प्रमाण में अगर दिल कृष्ण में फंस जाएगा तो आप यहाँ नहीं रहेंगे, खाली यहाँ से यहाँ रखना है उसको। कितना कहना आसान है ना, यहाँ से यहाँ रखना है बस, ये पैर निकाल के इधर रखना है क्या उसमें, नहीं जन्मों जन्म साधना करनी पड़ती है उसके लिए, ये सब कृष्ण के लिए प्रेम उत्पन्न करने के लिए। लेकिन धाम में आने से ये बहुत आसान हो जाता है, भक्तों के सम में धाम में दर्शन करने से यही जो कठिन बात है वो आसान हो जाती है। अकेले करने में एकांतिका भक्तिर हरिर भक्तिर उत्पाते ही विकल्पते, अकेले करना है तो उत्पात हो जाएगा, कष्ट मिलेगा आपको बहुत। तो यहां पर अंजन वन नाम की जगह है ये, यहां पर एक बार वृंदा देवी के निर्देश में आप गए थे हम लोग ना, वृंदा देवी के कुंड में बताया था ना आपको, वहां पर वृंदा देवी सब आयोजन करती है कहां मिलना है, तो यहां मिलने का एक बार तय हुआ किशोरी कुंड के किनारे ही। यहां पर बैठकर राधा कृष्ण विहार करते हैं, इसके किनारे बैठते हैं, बातें करते हैं, नौका विहार करते हैं, जल के लिए अंदर जाकर भी करते हैं। हर कुंड यहाँ का कृष्ण का चरणामृत है, विशेष कुंड नहीं है, खाली गोविंद कुंड ही नहीं है, सारे कुंड में जहाँ भगवान को या तो स्नान कराया गया है या तो भगवान ने खुद स्नान किया है छलांग मार के। वे भानुखर भगवान का चरणामृत है कि नहीं बताओ, यस और नो, क्या कथा थी उसकी, क्या आए वो पूछा उन्होंने, कौन है ये लड़की? तो ललिता बोली है कौन है तुम, क्यों पूछ रहे हो, चले जाओ यहाँ से। तो राधा रानी को अच्छा नहीं लगा, फिर वो अलग जाके नहाने लगी है ना। तो कृष्ण ने क्या किया, छलांग लगाया अंदर अंडर वाटर, तो चरणामृत हुआ ना, पानी के नहीं हुआ। लीला तो ऐसी है कि छलांग लगाया चरणों के नीचे गए, चरण पकड़ा और सीधे ऊपर आ गए ऐसे, लेकिन जैसे ही कृष्ण का शरीर जल में अंदर गया चरणामृत हुआ कि नहीं वो। फिर इसलिए कहते हैं, इसलिए ये विचार करने लायक बात है कि ब्रज में हर जल का बूंद रस का सार है, क्यों कहते हैं, क्योंकि सारा जल जो यहाँ पर अवेलेबल है जमुना जी का इधर का उधर का वो सब भगवान का चरणामृत ही है। जैसे हम उत्तरकाशी में जाते हैं ना तो जो भी पाइप से आता है और जो हम लेते आते हैं वो सब गंगा जल ही होता है, उसी को पाइप से घर भेजते हैं और हम लोग नदी से उठा के लेके आते हैं, वही है खाना पीना रहना स्नान करना केवल गंगा जल में ही है, उधर कोई अलग गंगा जल नहीं, सब जल गंगा ही जल है, उधर पूरा घिरे हुए हम लोग गंगा जल से। वैसे यहाँ पर हम सब रस से भरे हुए हैं, ये रस का धाम है। तो यहाँ पर मिलन तय हुआ उनका, तो कैसा होता है मिलन में, कैसा होता है कि कृष्ण को तैयार करने के लिए भी कुछ ग्रुप होता है, वो उनको सजाते हैं दूल्हा बनाते हैं, फिर राधा रानी को भी तैयार करने के लिए कुछ सखियाँ होती है वो उनको तैयार करती है, और फिर कुछ गोपियाँ उनको ले आती हैं, कुछ गोपियाँ इनको ले आते हैं। तो अक्सर लेट कौन होता है, औरतें, राधिका नहीं लेकिन इस बार श्री कृष्ण भगवान पहले आ गए यहाँ पे। और हमारे श्री कृष्ण कैसे है ना, बहुत व्याकुल रहते हैं हमेशा। चलो आपने बोला मिलना है तो ठीक है, वो तो अच्छे रहते हैं, मिलना है तो फिर मिलने के लिए ड्रेसिंग भी हो गया, श्रृंगार भी हो गया, पहुंच भी गए, किधर है किधर है किधर है, तो क्या करते हैं वो बताइए। जब वो हाँ तुरंत अपना अलार्म निकालते ना, पूरा ब्यूगल, मैं आ गया हूँ, आई हैव रीच्ड हियर, मुरली खोल के बजा देते हैं। राधा रानी के लिए कौन सा धुन बजाते हैं, 8 स्वरों में से 6वां जो है ना वो, उससे पत्थर पिघलता है और गायों को अपना नाम सुनाई पड़ता है, वो 6वां स्वर का परिणाम है। 8वां स्वर का परिणाम क्या है, वो केवल एक व्यक्ति के लिए समर्पित है। वो जब 8वां स्वर बजता है दुनिया में किसी को सुनाई नहीं पड़ता है, ओनली राधा रानी हियर्स इट। 8 स्वरों में से एक स्वर पूरा डेडिकेटेड उनके लिए है, जब वो बजता है तो केवल उसको पुकार सुनाई पड़ती है, राधे राधे बोलो। तो उन्होंने बजाया उस स्वर को, सीधे भानु महल में जब श्रृंगार चल रहा था वहां पर वो धुन पहुंची, तो फिर क्या हुआ, जो आराम से श्रृंगार चल रहा था एकदम वो व्याकुल हो गए एकदम, अरे वो पहुंच गए, क्या कर रहे सके, अभी तक तूने ये नहीं लगाया वो नहीं लगाया, चलो अभी क्या हो गया। तो कृष्ण हमारे कैसे हैं, एक बार बजा के छोड़ते क्या, उसमें एक प्रोग्राम रखा है, स्नूज प्रोग्राम, स्नूज यू नो, वो बार बार बजता है, वो रुकते नहीं है जब तक वो नहीं आती तब तक, तो बजाए जा रहे हैं, तो वो और व्याकुल हो जा रही है। तो उस भाव को क्या कहते हैं, मैंने आपको ऊंचा गांव में बताया था, विशुद्ध खंडिता भाव। देखो हमारे अंदर पंडिता भी बैठी हुई है जो बता रही है कि विशुद्ध खंडिता भाव यही हमको ग्रहण करना है और ग्रहण करके याद रखना है। और याद कब रखते हैं पता है आपको, जो आप सुनेंगे उस पर चिंतन करेंगे तो आपको याद रहेगा, और सुनते समय अगर आपके लिए वो महत्वपूर्ण है तो आपका सुनने का तरीका अलग रहेगा। तो पहला हमारी सुनने के लिए लालायित स्वभाव, फिर उस लालायित ईगरनेस में सुनना, फिर उस पर चिंतन करना, फिर वो याद हो जाता है। ये हमारा फिजियोलॉजी हमने पहले साल में सीखा है, ऐसे चिंतन करने से ही वो DNA बॉन्ड्स बन जाते हैं मेमोरी के, फिर वो परमानेंट हो जाते हैं। और हमको जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमने कई बार सुना है उसका, हम ऐसा ऐसा कर देते हैं उसको, फिर वो DNA बनता ही नहीं उसका, सारा चीज़ माइंड के ऊपर रहता है, पूरा शरीर माइंड के ऊपर चलता है, माइंड उसका बहुत पावरफुल चीज़ है। इसलिए ये न के न प्रकार ये न मन कृष्ण निवेशित, हमेशा मन को कृष्ण में लगाए रखो, उसी में मन का हित है, उसी में आपका हित है। तो क्या हुआ, विशुंड खंडिता भाव प्रकट हो गया, एकदम राधा रानी व्याकुल हो गया, बोलते अभी वो ड्रामा में कैसा था ना हमारा, वो एक घंटी बजते हैं ट्रिंग करके, वो हमारा तब अरे जल्दी जल्दी करो मुकुट पहनाना बाकी, अभी ये पहनाना बाकी, तक तो आईब्रोज किया नहीं तुमने, वो लिपस्टिक लगाया नहीं, चलो 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 ऐसे करके वो मेकअप मैन को भगाते ना, वैसे वो राधा रानी अपने मेकअप जो लेडीज हैं उनको अभी टेंशन दे रही है। फिर एक बार ऐसी मुरली बजती है, क्योंकि 8वां स्वर केवल मोनोटोनस नहीं है, उसमें भी तीव्रता बढ़ती रहती है, ऐसे इंटेंसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो जब एक बार ऐसे बजाते ना तो राधा रानी कहती है बस हो गया, अभी मुझे कुछ नहीं करना, मैं जा रही हूं। तो वहां से भाग के निकलती है वो, तो मेकअप मैन भी भाग रहे उसके पीछे, चलो मौका मिलेगा तो बीच में भी कर लेंगे भाग रहे वहां से बरसाने से, और यहां आ जाते, यहां पर वो इंतजार कर रहे हैं। और जैसे वो आते हैं एकदम आतुरता से कि आप मुझे पुकार रहे हैं, तुमने पुकारा और हम चले आए, ये सब भगवान के विषय में आप गा सकते हो फिल्म के गाने, जान हथेली पर ले आए, ऐसे राधा रानी भाग के आई वहां पे। तो आते ही ना कृष्ण ने दर्शन किया तो कृष्ण हंस पड़े, क्यों बताओ क्यों हंस पड़े, क्योंकि राधा रानी की आंखों का श्रृंगार बाकी था, जो काजल ही लगाया नहीं था। थोड़े क्यों हंस रहे हो, मैंने कहा तुम ऐसे उतावले होकर भाग के आए हो, काजल तो लगाया नहीं तुमने, अरे वापस जाके लगा क्या हो गया, नहीं 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 अभी तो मैंने इतनी बार मुरली बजाई तब तो आई हो, अब वापस जाओगे तो 10 बार मुरली बजाना पड़ेगा, नहीं नहीं अभी रुको आप यहाँ पर। तो कृष्ण उनको इस वन में ले गए और एक शिला पर अपनी उंगली घसी उन्होंने, भगवान क्या नहीं कर सकते, भगवान तो भगवान है, अरे सोते सोते दुनिया को निर्माण करते हैं, जगने की भी जरूरत नहीं है, ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, सो रहे हैं, सांस ले रहे हैं, दुनिया तैयार हो रही है अपने आप। इतने पावरफुल भगवान। तो उन्होंने एक शिला पर हाथ घिसा, उसमें से काजल निकला, वो सुंदर काजल लिया भगवान ने हाथ घिसकर और राधा रानी की आंखों का खुद श्रृंगार किया बड़े ही प्रेम से। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। तो वो शिला उस मंदिर में है, मैं आपको बार बार कहता हूँ, पहले बैठो बाद में जाओ, फिर भी आप जाते हो, फिर भी बाद में दोबारा जाते हो, अरे वो तो देखा ही नहीं जाते <हैं। laughs> तो वो शिला का नाम है कजरोटी शिला, जहाँ पर क ज रोटी यानी काजल वाली, काजल शिला भी कहते हैं उसको, भगवान ने ऐसे करके काजल लगाया है। आज भी आप घिसोगे ना तो आपको हाथ में काजल आएगा, जितनी आपकी श्रद्धा और भक्ति होगी। मैंने कितनी बार वहाँ पर सुरमा लगाया है, हाँ लगाना भी चाहिए। तो इतनी सी कथा है, ज़्यादा लंबी कथा नहीं है, लेकिन बहुत सार उसमें घुसा हुआ है, बसा हुआ है उसके अंदर। वो ये है कि भगवान की सेवा में ना हम लोग इतने परिपूर्ण नहीं है, बहुत देर है अभी उसको परिपूर्ण होने के लिए। लेकिन अगर हृदय प्रामाणिक है तो आपके सेवा में जो कमी है वो भगवान पूरी कर देते हैं। देखो इतने उत्सुकता से कृष्ण के आनंद के लिए भाग के आए ना वो, तो उसमें श्रृंगार में अधूरापन है ना, समथिंग इनकम्प्लीट। लेकिन भगवान ने अपने हाथों से उसको पूरा किया, परफेक्ट बना दिया उसको। तो इसलिए हम तो पतित हैं ही, उसमें क्या है, उसमें कोई डाउट है ही नहीं, और कितना न्यूज़पेपर में देखे उसको अभी, लेकिन पतित होने का कोई प्रश्न ही नहीं है, पतित ही है सब लोग। और उसमें जो भी प्रयास करेगा वो इनकम्प्लीट ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हृदय प्रामाणिक होगा ना तो ठाकुर जी आपका अपूर्णता को पूर्ण कर देंगे। ये यहां पर शिक्षा है। और सेकंड शिक्षा है, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी क्या करते हैं, हम सब लोग अज्ञान के सागर में डूबे हुए हैं। अज्ञान मतलब क्या, सबसे बड़ा अज्ञान अविद्या क्या है कि मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा ये पता नहीं हमको अभी तक, मैं शरीर हूँ, ये शरीर का ही सब कुछ मेरा है, एवरीथिंग कनेक्टेड टू बॉडी इज ऑल माइंड। ये सबसे बड़ी अविद्या जो है ये अज्ञान का अंधकार कहा गया उसको। इस अज्ञान के अंधकार में सब लोग दुख भोग रहे हैं इस अविद्या के ऊपर जीवन चलाते हुए। क्योंकि जब हमारा जैसे कि आपको भी नीट में एडमिशन लेना है और का अलग ही कुछ क्लास में जाके पढ़ाई कर रहे हैं आप, समझो बाय मिस्टेक, तो कुछ फ़ायदा होगा आपका, रॉन्गली प्लेस्ड, अज्ञान की वजह से ट्रैक ही डिफरेंट हो गया, जाना था कहीं, वो क्या बोल रहे ना वो, अरे भूलना क्या था और क्या भूल गया, ये अज्ञान की वजह से होता है। तो अज्ञान के कारण ही सारे दुखों का कारण अज्ञान है। तो वो अज्ञान के अंधकार में गुरु महाराज ज्ञान का उजाला करते हैं, क्योंकि वो ज्ञान का अंजन लगाते हैं, ज्ञानांजन शलाका है, वो ज्ञान के अंजन का जो शलाका यानी किरण है उसकी वजह से हमारा जीवन समृद्ध हो जाता है। तस्मय, ऐसे गुरु जी को हम प्रणाम करते, तस्मय श्री गुरु वै नमः। तो वो भी यहाँ पर शिक्षा है, यहाँ पर आप प्रार्थना करेंगे तो गुरु कृपा होगी आपके ऊपर, हाँ, और आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश आएगा। सबसे पहली स्टेप है ज्ञान, वो आपको पता होना चाहिए कि सत्य क्या है। आपका हृदय प्रामाणिक होगा तो आपको सत्य ज्ञान प्राप्त होगा। जो दिल से साफ है उसको सत्य वैसे ही दिखाई पड़ेगा। कृष्ण भावनामृत की और एक व्याख्या ऐसी है, कृष्ण भावनामृत यानी जो चीज़ जैसी है वैसी वो आपको दिखा देती है, तत्वतः उसी को कृष्ण भावना कहते हैं। कृष्ण के साथ संपर्क होते ही अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है और जो चीज़ जैसी है वैसे आपको दिखाई पड़ती है। एक्चुअली हाउ इट इज रिवील टू यू। जब ये सत्य लोग बोलते हैं ना कि अरे परिवार में कुछ अर्थ नहीं है, सब लोग बाकी दुखी को प्राप्त करते हैं, हम लोग पूरा जीवन उसको निभाते हैं, एंड में समझते हैं अरे ये तो पहले कहा था वो सही था, एक्चुअली इतना समय बिताया फिर भी हमको वो अनुभूति नहीं हुई। अभी एंड में आप हमारे हॉस्पिटल में आइए, आप या तो हॉस्पिस में आइए और सब लोग लास्ट स्टेज में, उनको पूछिए हाउ आर यू, आपके जीवन के बारे में क्या विचार है, वो कहेंगे प्रभु जी कुछ राम नहीं है, नो मीनिंग, सब निरर्थक है, एवरीथिंग इज अ वेस्ट। हर एक मरणासन्न क्या कहते हैं मरणशैया मृत्युशैया पर लेटे हुए व्यक्ति से आप पूछिए कि आपका जीवन के बारे में क्या अनुभव है, क्या आपका रियलाइजेशन है, तो बताएंगे प्रभु जी सब बेकार है, इट्स ऑल यूजलेस। वो तो पहले भी कहा था, तब समझ में नहीं आया, अभी जब खुद लात खाया तो समझ में आया कि हाँ वो जो कहा था वो सही था। तो इसका मतलब क्या सब छोड़ के भाग जाएंगे हम? नहीं नहीं, हमको सब कुछ करना है। एक सुंदर बात बताता हूं आपको, भगवान के विषय में हृदय से काम लो, दुनिया के विषय में दिमाग से काम लो। हम लोग उल्टा करते हैं, दुनिया को दिल दे देते हैं, जब भगवान का विषय तो तर्क करते हैं, तो ऐसे कैसे, वो निराकार कैसे, वो साकार कैसे, वो सगुण कैसे, निर्गुण कैसे, वो ऐसे कैसे, 66 गुण क्यों, 64 गुण क्यों नहीं, 64 गुण इसको ही क्यों, उसको क्यों नहीं, सारा दिमाग वहां लगा देते हैं, वही फंस जाते हैं, कुछ भी नहीं हासिल आता। हमारे गांव में कहावत है करटे बड्डे, वो करटी होते ना मतलब नारियल की, वो नारियल निकालने के बाद में कितना ही घसो कुर 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 खाले आवाज आएगा, नारियल नहीं गिरेगा उसके अंदर। तो ऐसा कितना भी तर्क करो आप, हमारे गांव के अच्छे अच्छे कहावत है, क्या कहें आपको। तो वो नारियल के जाने के बाद में कितना भी घिसोगे आपको उसको, तो खाली कुर 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 आवाज आएगा लेकिन नारियल नहीं गिरेगा उसके अंदर। वैसे ही दिमाग के स्तर पर भगवान को कितना भी आप तर जाचो कुछ निकलेगा नहीं, समय बर्बाद निश्चित होगा। इसलिए अभी हमने दिमाग भगवान के ऊपर लगाने को रखा है और दिल दुनिया को दिया है, अभी उल्टा करना है, दिल भगवान को देना है और दुनिया के साथ दिमाग से काम करना है, हृदय से भगवान के विषय में काम करना है और कर्तव्य बुद्धि से दुनिया में काम करना है। कुछ छोड़ना नहीं है अपना, सब पता है हमको, हमारे परिवार के सारे लोग, हमारे समाज के लोग, देश के लोग कैसे हैं, दुनिया कैसी है, जीवन कैसा है, सब पता है, लेकिन अपने कर्तव्य से भागना नहीं है हमको। कर्तव्य करो हृदय से करो, लेकिन उसमें दिल आसक्ति मत बनाओ, क्योंकि आसक्ति लगाओगे तुरंत फटका पड़ेगा आपको निश्चित रूप से। दुखालयम अशाश्वतम माम उपेत्यतु कौन्तेय दुखालयम अशाश्वतम, भगवान ने लिखा ही है कि मैंने जब ये दुनिया बनाया तो उसमें सुख का एलिमेंट डाला ही नहीं इसके अंदर, फॉर्मूला ऐसे बनाया है है ना, मैं करेले का सब्जी बनाया है तो मिठास का कोई गुंजाइश है क्या उसके अंदर? नो, करेले के किधर भी जाओ आप, करेले के पेड़ में राइट में जाओ, लेफ्ट में जाओ, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, आम नहीं मिलेगा आपको उसके अंदर, करेला ही मिलेगा, वैसा ही बनाया है उसको। आम के पास जाओगे तो आम मिलेगा। तो उस तरह से दुनिया हमारी भगवान ने ऐसे बनाई है, आप कितना भी हाथ पांव मारो आपको सुख नहीं मिलेगा। और उसमें सुख अगर मिलना है तो संतों ने कहा है कि इस दुनिया में अगर आपको सुख चाहिए, किसको, कितने लोगों को चाहिए, मुझे तो चाहिए, अरे इतना शर्माते क्यों, बोलो बिंदास बोलो, क्या दो दिल में बोल डालो, दुनिया में रहते हुए आपको आज के तारीख में सुख चाहिए कि नहीं चाहिए?
चाहिए।
बहुत धीमी आवाज आ रही है, क्या पता नहीं क्या मन में आपके, मन में क्या किंतु परंतु समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो वो कहते हैं संत लोग कि अगर आप इसको दुनिया में रहते हुए आपको सुख चाहिए तो सबसे पहले इस दुनिया में सुख ढूंढना छोड़ दो, फर्स्ट स्टेप। अगर वाकई में आपको सुख चाहिए फिर आपको दुनिया में अगर आप खोज बंद कर देंगे तब आपको भगवान के चरणों में वो सुख मिलेगा जो आपको चाहिए। लेकिन आपको चाहिए और आप उसको गलत जगह ढूंढ रहे हो तो मिलेगा क्या? वो नहीं मिलेगा ना। जे आचार्य हमेशा कहानी बताते हैं कि किसी की ना एक सुई गिर गई, अंधेरे कमरे में गिर गई सुई, तो वो ढूंढ रहा है, तो एक ने लाइट लगाया, तो लाइट है ना, सुई यहाँ गिरी थी, लाइट वहाँ है छोटी सी एकदम, तो वहाँ सुई ढूंढ रहा है, तो बोल रहे सुई क्यों नहीं मिल रही है, बोलो सुई लाइट में ढूंढ रहा हूँ, लेकिन आप लाइट में क्यों ढूंढ रहे हो, सुई वहाँ गिरी नहीं तो सुई कैसे मिलेगी उधर? नहीं नहीं लाइट है ना इसलिए ढूंढ रहा हूँ उधर समझे आपको, लाइट उधर है, सुई यहाँ गिरी थी लेकिन ढूंढ वहां रहा है क्योंकि लाइट उधर है, इसको अज्ञान कहते हैं। जहां गिरी थी वहां ढूंढना चाहिए। अरे आपको लगेगा कि मैं किसी किसी की कहानी बता रहा हूँ, अरे ये सब हमारी सबकी कहानी है, ये हम लोग सब लोग वो सुई कहाँ ढूंढ रहे हैं मालूम है ना, जहां पर वो नहीं गिरी है वहां ढूंढ रहे हैं, हमारा सबकी कहानी है ये। तो इसलिए जहां सुख है वो अगर आपको पाना है तो पहले वो कहाँ है उसका ज्ञान मिलना चाहिए ना, कहाँ है वो, और जहाँ नहीं है वो भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर मत्था मोड़ी पोड़ी मत करो, यहाँ पर नहीं मिलेगा वो, ये यकीन होगा तो आप वहाँ जाओगे जहाँ उसको ज्ञान आपको हो गया है, फिर वहाँ मिलेगा आपको। इसलिए संत लोग कहते हैं कि दुनिया में खुशियाँ मत ढूंढो, भगवान के चरणों में ढूंढो, तभी आपको जो वास्तविक सुख की आवश्यकता है, जिसके आप भूखे हो, वो आपको भगवान के चरणों में मिलेगा। जब आपको उसका रुचि लगेगा ना फिर आप दुनिया में वापस लौट के नहीं आएंगे। हमारे इस्कॉन में एक बड़े आचार्य हैं जो हमारे हॉस्पिस में जुड़े हुए हैं, हिज होलीनेस गिरिराज महाराज। देखो कितनी समर्पक कथा है, बहुत सुंदर कथा है। वो अमेरिका के अब्जोपति फेमस वकील के बेटे थे। हिज फादर वॉज वेरी फेमस। इकलौते बेटे थे उनकी, एक बहन और एक भाई, लेकिन एक ही लड़का। शायद वकील बनेगा तो और हमारे से आगे जाएगा, ऐसा उनका विचार था। लेकिन वो ना प्रभुपाद के पीछे ब्रह्मचारी बन गया। वो इतने बड़े आदमी का लड़का, तो पिताजी परेशान थे, इतनी कब्जों की प्रॉपर्टी, इतना सब कुछ किसको देना है। तो प्रभुपाद जी के पास आए और प्रभुपाद जी को एक चेक दिया हाथ में, ब्लैंक चेक। बोले महाराज जी, बोले इंग्लिश में बोला, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट राइट ऑन दिस, कितना आपको अमाउंट लिखना है मैं दे दूंगा, साइन कर दूंगा, मेरे बेटे को वापस करो। तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला, मुझे ये चेकबुक नहीं चाहिए, अपने बेटे को ले जाओ आप, लेकिन उसको पूछना जाने के पहले, उसकी मर्जी है, मैं चेक के लालच में उसको ब्रह्मचारी नहीं बनाया है। तो बेटे के पास गए तो बेटा बोला, पिताजी मुझे नहीं आना है घर पे, मुझे यही रहना है। तो देखिए कितना बड़ा, इतना बड़ा आदमी ब्लैंक चेक दे रहा है आपको, और आप कोई भी अमाउंट लिख सकते थे। जाने ना, एक भक्त गया तो क्या हुआ, दूसरे को भक्त बनेंगे, पहले चेक तो ले लो। प्रभुपाद जी उसके लिए वहाँ पर नहीं गए थे, वो तो लोगों को कल्याण करने के लिए गए थे, वो तो थोड़े पैसे के लालसा से गए थे। तो फिर ये ब्रह्मचारी गिरिराज महाराज ब्रह्मचारी थे भी, वो जुहू मंदिर में आए, और जुहू मंदिर में वो आपको क्या बताऊं, उनको उन्होंने कई लड़कियों ने उनको बहकाने का कोशिश भी किया था। विदेशी व्यक्ति है, जवान व्यक्ति है, सुंदर जवान व्यक्ति है, तो उनको कई सुंदर युवतियों ने बहकाने का प्रयास किया, जैसे हरिदास ठाकुर को किया था, वैसे उनकी कहानी हुई है जिंदगी में। तो एक बार एक रिपोर्टर आई और रिपोर्टर ने कहा कि मैं आपको एक प्राइवेट प्रश्न पूछना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखो, आप सब कुछ ये स्त्री का संबंध सब छोड़ के गेहुआ वस्त्र पहन के ब्रह्मचारी बने हो, है ना, लेकिन एक आप कल्पना करो कि आप ना एक बीच जंगल में हो, वहाँ एक सुंदर महल है और सब बहुत सुंदर व्यवस्था है, और वर्ल्ड की सबसे सुंदर युवती जो है वो आपको यहाँ पर उपलब्ध है, और वो कह रही है कि मुझे आपसे संबंध करना है, तो आप क्या करोगे। उसको लगा कि मैं ऐसा गहन प्रश्न गुगली पूछ रही हूँ कि ये क्लीन बोल्ड हो जाएगा। लेकिन जिसको भगवान के विषय में साक्षात्कार हुआ है उसका क्लीन बोल्ड कोई नहीं कर सकता, दुनिया के लोग तो कर ही सकते नहीं, कोई संत आएगा तो बात अलग है, लेकिन दुनियादारी का कोई व्यक्ति ऐसा कोई फालतू प्रश्न पूछता होगा सोचते हुए कि क्लीन बोल्ड हो जाएगा और मैं पेपर में कल छाप दूंगी इसके बारे में। उसने कहा कि मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ कि अगर मैं जंगल में बैठा हूँ, सुंदर महल में बैठा हूँ, इतना सुंदर वातावरण है, और मुझे किसी ने स्टूल ला के दिया खाने के लिए, तो मैं खाऊंगा क्या उसको। स्टूल मतलब मल, हमारा जो मल निकलता ना सुबह सुबह, वो अगर देंगे अच्छी थाली में, चार सोने की थाली में, सोने के चम्मच के साथ देंगे, तो आप खाएंगे क्या। तो इसमें क्या बताया उन्होंने कि जो मैंने त्याग दिया है ना वो मल की तरह है, वो सुअर खाता है बड़े चाव से, लेकिन मेरे लिए वो मल है और मैंने उसको त्याग दिया है, मैंने जो त्याग दिया है मल वो दोबारा खाऊंगा क्या मैं अपनी जलेबी खाई कल परसों, है ना, समझो जलेबी खा के अच्छा आनंद लिया आपने बहुत, और कुछ देर में आपको उल्टी हो गई, तो आपको मेरी जलेबी अगर खाएंगे क्या उसको आप, क्यों नहीं खाओ, जलेबी थी वो। लेकिन अभी वो वॉमिट हो गई, वमन हो गया उसका, वमन के बाद वो खाद्य नहीं है वो चीज़, कितनी भी सुंदर जलेबी घी में तली हुई केसर की होगी, गरम गरम थी, कुरकुरीत बहुत, लेकिन अंदर जाके बाहर आई तो खा सकते क्या उसको आप, वही जलेबी कल सुबह बाहर निकलेगी तो खाएंगे क्या उसको, आपको लगेगा क्या प्रभु जी बोल रहे। लेकिन आप सोचो उसके बारे में, जो चीज मल के रूप में आपने त्याग कर दी है उसको आप दोबारा स्वीकार कर नहीं सकते हो, लेकिन अभी हमको हमारे को मल के अंदर ही रुचि है, तो मल को ही खा रहे हैं हम लोग सब लोग। लेकिन ये वाक्य उन्होंने उत्तर दिया, बिना साक्षात्कार के ये वाक्य नहीं बोल सकता है व्यक्ति, जिसको पता है कि पुरुष स्त्री का संबंध एक मल की तरह है वही व्यक्ति बोल सकता है, नहीं तो वो बहाने हंसा ऐसा गोल 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 घुमा आंसर देगा वो, लेकिन इनको अनुभूति है कि ये मैंने मल के रूप में त्याग दिया है। और बाल ब्रह्मचारी आज उनकी उम्र 75 साल की है, इतने दिव्य संत है, मैंने उनका कई बहुत समय तक संग किया उनका, बहुत बड़े साक्षात्कारी संत हैं वो। तो कहने का तात्पर्य है कि इस दुनिया में आनंद नहीं है, बार बार प्रभुपा जी छह छह महीने में एक बार पूछते थे शिष्यों को, आर यू कन्विंस्ड दैट देर इज नो प्लेजर इन द मटेरियल वर्ल्ड? बार बार पूछते थे, आर यू कन्विंस्ड? रिपीटेडली यूज टू रिमाइंड, आर यू कन्विंस्ड? कि अभी भी आपको श्रद्धा है कि दुनिया में कुछ है, दम जाने का, टेस्ट करने का विचार है आपका? बार बार पूछते थे। सबसे पहले मन में कन्विंस कर लो अपने आप को, रहो दुनिया में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर्तव्य निभाते रहो अच्छी तरह से, भागने की जरूरत नहीं। हम लोग का पलपुटे नहीं है कि भाई भाग गए इधर के मारे, नहीं, उधर रहो आराम से, अपना काम करो अच्छी तरह से। दिल भगवान को दो, हृदय भगवान को दो। हमारे संप्रदाय में एक रघुनाथ दास गोस्वामी हुए हैं, राजकुमार थे वो, उनके पिता माता 400 साल पहले उनका 1,20,000 सोने की मोहरे का इनकम था हर महीने। बोलो आज कितना होगा, गिनते जाओ। उनके एक ही एकलौते पुत्र थे, उनका ही राज्य था पूरा, लेकिन उनका दिल चैतन्य महाप्रभु पे लग गया था। वो बार बार भागते थे उनके पीछे, उनको बार बार सैनिक से बांध के लेके आते थे। तो वो पति पत्नी चर्चा कर रहे, अरे क्या करे इस पुत्र को, चलो एक सुंदर अप्सरा जैसी लड़की शादी कर देते इसकी, तभी संसार में इसका मन लगेगा। वो करने के बाद भी कुछ भी नहीं उसको इंटरेस्ट। तो माता पिता बाद में चर्चा करते रहे, जिसका दिल चैतन्य महाप्रभु में लग गया है, आसक्ति हो गई है, उसको कौन सी दुनिया की लड़ो औरत उसको छीन सकती है? क्या कर रहे हैं हम लोग, मतलब क्या प्रयास कर रहे हैं, किस चीज से वो आसक्त है और क्या हम उनको दिखा रहे हैं आकर्षित करने के लिए? सब बेकार का प्रयत्न है, छोड़ दो उसको। उसके बाद नित्यानंद प्रभु की उनकी मुलाकात हुई, और फिर एक उसके पहले चैतन्य महाप्रभु मुलाकात हुई, नित्यानंद प्रभु की मुलाकात हुई। उन्होंने कहा, अभी आप ना ये बार बार भागने का काम छोड़ दो, राज्य का कारोबार अपने हाथ में लो, पिताजी के उपलक्ष में दिल लगा के सब राज्य को चलाओ, किसी को लगना नहीं चाहिए कि आपका दिल किधर है। उसने उनको एक ना एक अजीब वाक्य बताया, देखो आप बराबर ध्यान से सुनो, थोड़ा सा 5 मिनट लूंगा आपका। उन्होंने एक ऐसा एक कोड वर्ड बताया उनको, मतलब क्या कोड़ियातला वाक्य सांगितलं, कोड़ियातला वाक्य क्या बोले वो, ऐसा एक कहानी बताया उन्होंने। कहा कि एक स्त्री है शादीशुदा, उसका पति है, लेकिन उसका प्यार किसी और आदमी से है। ये कहानी चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास को बता रहे हैं। आपको लग रहा भाप रे भगवान भी ऐसी बात बताते हैं, लेकिन भगवान को उनको पब्लिक में भी बोलते हुए एक संदेश देना है, प्राइवेट संदेश, इनर सीक्रेट मैसेज। उन्होंने कहा कि एक औरत है जिसका पति है लेकिन उसका दिल किसी और के पास में है, तो वो अपने घर का काम इतना अच्छा करती है, इतना पति का ख्याल रखती है कि पति को डाउट भी नहीं आना चाहिए उसका दिल किधर है। एक बार पति का अच्छा सेवा करके पति संतुष्ट हो गया, एकदम बिंदास होकर चला गया, फिर ये उसको मिलने जाती है। घर में ऐसा नहीं कि ताला डाल करे काम नहीं करेगी, डाउट आएगा मन में, क्या है दिल नहीं लग रहा है उसका, कहीं और दिल होगा, नहीं। वो कह रहे हैं उनको, आप अपने पिता के राज दरबार में ऐसा काम करो राजपुत्र के रूप में कि लगेगा लोगों को कि आप दुनियादारी के आदमी हो, परफेक्ट पाउंड्स एंड शिलिंग मैन, लेकिन हृदय जो है वो मेरे पास रखो। फिर एक दिन ऐसे आप रहोगे, सबका जो डाउट है वो निकल जाएगा एक दिन, कि इसका अभी दिल दुनिया में लग गया है, अभी भगवान भगवान कुछ नहीं इसके मन में। उस समय सारे दरवाजे आपके खुल जाएंगे, उस समय आप भाग जाना। तो ऐसा उन्होंने राज दरबार में पिताजी का राज कारबार अपने हाथ में लिया, इतना बढ़िया उसका वर्णन है, बहुत कैसा सुंदर चलाया कि सबको यकीन हो गया कि अभी ये दुनिया में बस गया है। उस पर कांस्टेंट पहरा रहा करता था राजपुत्र होने के बावजूद भी, कहीं भाग न जाए। धीरे धीरे पहरा भी हटाया गया। एक दिन वो देवी का मंदिर में पुजारी बीमार पड़ा, तभी बहुत प्रॉब्लम हो गया, अभी राजा का कौन करेगा, अभी कोई पुजारी सामने नहीं मिल रहा था, प्रॉक्सी क्या कहते हैं उसको, लोकम नहीं मिल रहा था कोई। तो ये रघुनाथ दास खुद बोले कि मुझे भी देवी पर बहुत प्रेम है, मुझे भी देवी की सेवा करनी है, मैं बनूंगा अभी क्या है, राजा वो तो क्या हुआ, हम भगवान की सेवा तो कर ही सकते हैं। तो देवी की सेवा स्वीकार कर लिया, दिन भर सेवा किया, जैसे देवी का शयन कराया भाग गए, क्योंकि सब लोग पहरेदार काफिल थे, अभी तो ये तो कुछ करने वाला नहीं है, अभी क्या पहरे की जरूरत है। ऐसे सब लोगों को गाफिल रखे, जो दिल में बात थी उसको दिल में रखे, भाग गए एक दिन, और चैतन्य महाप्रभु को मिले, और फिर जीवन भर उनके साथ में रहे। संतों का जीवन ऐसा है, उनकी हृदय की अनुभूति बहुत गहराई में होती है, बाहर वो कुछ भी काम करते रहेंगे। वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए थे, यानी वैष्णव क्या करता है, उसके मन में क्या है, कोई पहचान नहीं सकता है, क्योंकि उसका दिल भगवान पे लगा हुआ है। दुनियादारी के काम करते हुए भी उसका जो दिल है वो हमेशा भगवान पर ही, वो एक भवरे की तरह होता है, वो भगवान के रूपी गुलाब कमल में हमेशा मंडराते रहता है उसका मन, शरीर कहीं भी रहे। और हमको भी ऐसा ही रहना चाहिए। संत लोग कहते हैं दुनिया में रहो लेकिन दुनिया के बन के मत रहो, दुनिया में रहो, लिव इन द वर्ल्ड बट डोंट लिव एज इफ यू आर ऑफ द वर्ल्ड। यही सब लोगों को आपको विनती है मेरी, सब कुछ काम करते रहो, अपना कर्तव्य निभाते रहो, दिल भगवान को दो और दिमाग से अपना दुनियादारी का काम करो, एक दिन जरूर आपको भगवान मिलेंगे। हाँ, माया देवी को भी गाफिल कर दो, माया देवी लगेगा कि ठीक है भाई अपना मेरे ही गोद में आ गया है, ठीक है, एक दिन भाग जाओ भगवान के चरणों में। भागने का मतलब यह है अपना भगवान के ऊपर प्रेम बढ़ाओ, जो दुनिया पर प्रेम कर रहे हैं उसके बदले में भगवान पर प्रेम करो। भगवान आपको कभी भी प्रेम में दगा नहीं देंगे, इस दुनिया में प्रेम करेंगे तो ये प्रेम करने वाले दगा देंगे या तो आपका शरीर आपको दगा देगा जो मर जाएगा और प्रेम का संबंध टूट जाएगा। बोथ वेज, इट इज टेम्पररी, दिस वे और दैट वे। तो यहाँ पर इतनी सुंदर लीला है, इसको बार बार चिंतन करेंगे तो हृदय पवित्र हो जाएगा हमारा, साक्षात्कार सत्य के बारे में हो जाएगा। और हमको सबको सत्य को पहचाना है कि सत्य क्या है, व्हाट इज द ट्रूथ, आई वांट टू नो द ट्रूथ। वो जो सत्य है वो तो भगवान नाम का जप जब हृदय पर काम करेगा तो हृदय पवित्र हो जाएगा और शुद्ध पवित्र हृदय में पवित्र दृष्टि प्राप्त होगी, फिर भगवान का दर्शन होगा। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जब प्रेम की दृष्टि निर्माण होगी, हृदय में प्रेम का अंजन होगा, जो यहाँ पर अवेलेबल है वो, तो प्रेम का अंजन आंखों में अवेलेबल होगा तो उस प्रेम के अंजन लगाए हुए आंखों में भगवान का दर्शन हमने हृदय के पटल पर होगा। और यही सत्य है, विश्वास नहीं होगा तो भी ये सत्य है और उसको आप अपनाइए। हमारे साइंस में हम लोग क्या करते थे, एक होता था गृहीतक यानी पॉस्टुलेट, समथिंग वी एक्सेप्ट इन द बिगिनिंग, ठीक है, फिर प्रयोग करते थे और गृहीतक को लेकर प्रयोग करने के बाद जो नतीजा है वो बनता था थियोरम यानी कि सत्य, फिर सत्य के रूप में वो जनरल प्रकाशित हो जाएगा। वैसे ही आप मेरे कहने से, मैं विनती करता हूँ मेरे कहने से मान लो ये बात शुरुआत में, और वो थोड़ी बात मानकर जब शुरू करो फिर आपको साक्षात्कार होगा कि सत्य क्या है। नहीं तो मैं आपको इतनी जोर से नहीं बोलता उस बात को, मराठी में कहते ना पोट तिड़की नहीं कलवड़ा नहीं, नहीं बोलता मैं आपको, क्योंकि यही सत्य है। और जब आपको सत्य पता चल चुका है और आप देख रहे हैं लोग भटक रहे हैं असत्य के चक्र में, तो आप रह सकते नहीं शांत, आपको आप अशांत हो जाएंगे जब तक आप उनको रास्ता नहीं दिखाएंगे। अरे भैया उधर क्यों जा रहे हो, उधर गड्ढा है, अंधेरे में क्यों जा रहे हो, इधर जाओ रास्ता इधर है। भक्त लोग को प्रचार करते हैं कि उनको पता है कि ये सब लोग इतने भटक रहे हैं दुनिया में, इनको जरा बचाओ, कोई बड़प्पन या गर्व की बात नहीं इसमें, वो दुख होता है देखकर कि लोग इतना सब कुछ समझने पर भी इतने अज्ञान में क्यों डोल रहे हैं, इतना दुख क्यों, धक्का क्यों खा रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी इतना आनंद का समय था ना, इतना बुढ़ापे का समय था, वृंदावन धाम था, दामोदर मंदिर में अच्छी कुटिया थी, क्या जरूरत थी अमेरिका जाने की, अच्छा मौत का समय भी पास में आया है, वही रहो भजन करो फर्स्ट क्लास भगवत धाम चले जाओ। उनके लिए वो सब सुख का साधन था, सब कुछ अवेलेबल था, संन्यास ले चुके थे, दामोदर मंदिर का रूम अवेलेबल था, इतना सुंदर स्थान वृंदावन धाम, पक्की उम्र है, मौत के सामने है, फिर सब कुछ छोड़ के विदेश क्यों गए, उधर माया के नगरी में, जानते थे उनका गुरुजी का आदेश था कि वहाँ पर लोग भटक रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं वो, आज भी पता नहीं क्या कर रहे हैं, भटक रहे हैं सब लोग, इतना कीमती मनुष्य जीवन जो है ना वो कुत्ते बिल्ली की तरह बिता रहे। उनको जगाने के लिए गए थे और उनमें से कितने लोग जो नशा करते थे, व्यभिचार करते थे, जुआ खेलते थे, सब लोग छोड़कर संत बने, उनका संग करते हम, इतना परिवर्तन लाया उन्होंने करुणा की वजह से। इसलिए हम उस करुणामयी को पुकारते हैं कि वो करुणा करे हम पर, आप सबके ऊपर, और हम सबका कल्याण हो जाए, वो सब अज्ञान के अंधकार से मुक्त हो जाएं और भगवान के चरणों के प्रकाश में जीवन सत्य को देखते हुए चलाएं और हमेशा आनंद ही रहे। क्यों दुखी रहना है आपको, बी ऑलवेज हैप्पी, क्योंकि आनंदित रहना हमारा स्वभाव है, आनंदमयोभ्यासात। वो आनंद वाला व्यक्ति दुख में क्यों रहना चाहिए, वो सुख का मार्ग अवेलेबल है, आनंद का मार्ग अवेलेबल होते हुए भी दुख में क्यों तड़पना है हमको। इसलिए भगवान का नाम लो और कंजूसी मत करो, कई बार कह चुका माला लो और जप करो, लेकिन कई लोगों के पास माला अभी भी नहीं है, वो सोचते मन में करेंगे, अरे मन में कहो लड्डू खाते हम लोग, मन में कौन जप कर सकता है, इतना थोड़ी सिद्ध हो गए हम लोग गृहस्थ में रहते हुए, इज इट पॉसिबल। वैखरी यानी मुख से बोलना चाहिए, तब जाकर मन सुनेगा, कान सुनेगा। उसके आगे की स्थिति है वो पांश और मानसिक, उसी को अभी से कैसे कर सकते हैं। अभी वो मन में बोल रहे, तभी मन में फिर वो पॉलिटिक्स की याद आती है, महाराष्ट्र में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, मुंबई में क्या हुआ, घर में क्या होगा, होगा शहर में ऊपर नीचे हो गया, क्या हो गया। इसलिए मुख से बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे जहाँ संकोच नहीं करना चाहिए वहाँ बिना संकोच निर्लज्ज से हम लोग काम करते हैं, और जहाँ बिंदास काम करना चाहिए वहाँ पर संकोच से मुख से भी ऐसा नहारी निकलता नहीं नाम। अभी झगड़ा हो गया तो बोलेंगे क्या उसको, जोर से बात झगड़ा करो, इतना आवाज़ कम क्यों है आपकी, अच्छी तरह से बोलो, ऐसा बोलना पड़ता है झगड़ा करने के बाद। पूरा जितना वॉल्यूम है ना पूरा 100 हो जाता है झगड़ा करने के बाद, और भगवान से प्रेम से नाम लेने की बात आती है तो 0 वॉल्यूम भी ऊपर नहीं आता है, 1 भी वॉल्यूम ऊपर नहीं आता है। क्यों ऐसे, क्यों ऐसा दुर्भाग्य में हम लुटे हुए हैं। पुकारो भगवान को प्रेम से, बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को इशारा काफ़ी होता है, मूर्ख व्यक्ति को बार बार बोलना पड़ता है। तो हम लोगों को बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एक बार बुद्धिमान व्यक्ति को पता चला ना कि यह रास्ता सही है, उधर ही जाएगा वो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारी आपको विनती है, हमारी बातों की कठोरता को अन्यथा मत लेना, हमारा स्वभाव ही ऐसा है, हम लोग कर रहे ही बोलते हैं, क्या करें। लेकिन एक मैंने वो गोवर्धन के परिक्रमा में एक वाक्य दिखा था, वो लोगों को पढ़ा के सुनाया कि जो कठोर वचन बोलता है उसके कठोर वचन की बुराई मत मानना, क्योंकि कठोर वचन सत्य बोलने वाले व्यक्ति के मन में कुछ कपट नहीं होता है। ऐसा लिखा था, मैंने नहीं बोला है, उधर बड़ा पढ़ो पढ़ो उधर लिखा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।